डॉक्टर किसी का आपने कुछ बयान करना है
नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे इस बात का फख्र है कि हजरत साहब मुझ जैसे नालायक आदमी को आप जैसे लोगों के सामने, बुजुर्गों के सामने, नेक लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं। और मेरा अपना कोई हाल अहवाल नहीं होता, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद यार है और आपको उसके वाकयात में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मराकज में सुनाता रहा हूँ। और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो हजरत जिनके मैं वाकयात आपको सुनाता रहता हूँ इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं। पिछली दफा पिंडी के इज्तमाल में जुमेरात के दिन हजरत साहब ने मुझे खड़ा किया तो पूछा कि कुछ नए वाकयात हैं, तो मोहम्मद यार ने जो फोन पर मुझे कोई दो तीन वाकयात बताए थे तो मैंने इनको सुना दिए। तो मैंने हजरत साहब की हुक्म के मुताबिक मोहम्मद यार को कहा कि ये तुम्हें लिखते रहो बाकायदगी से, ताकि एक दफा फिर और जिस तरह पहले ईमान उफरोज वाकयात की सूरत में आपको आपने पंफलेट पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा दूसरा पंफलेट भी शाया कर दिया जाए। तो उसने वो लिखने शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसने रात को मेरे हवाले किए, अभी मैंने पढ़े नहीं है तो अभी इंशाल्लाह ताला उसको एडिट करके फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसके पूरे वाकयात तसलसल के साथ सुना दूंगा। जो पिछली दफा मैंने दो तीन वाकयात सुनाए थे, चूंकि इस वक्त लाहौर वाले साथियों ने शायद नहीं सुने थे तो पिंडी वाले साथियों ने सुने थे, वो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। वो दो तीन वाकयात हैं। सबसे पहले मेरा अपना जाती वाकया, वो यूं हुआ है कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है वो कस्टम क्लीयरेंस एजेंसी चलाता है शाहौर में और अल्लाह का बड़ा फजल है उसके ऊपर और अच्छा रिज्क अल्लाह उसको दे रहा है। बहासदों ने देखा कि ये छोटा सा लड़का जो है इतनी उम्र में इतने पैसे कैसे कमा रहा है, तो मुखबरी कर दी कि जी ये तो टैक्स नहीं देता, ये चोरी करता है, ये वो है। तो बहरहाल जी टीम आ गई, उन्होंने छापा मारा दफ्तर में, उन्होंने आके जी आप उसकी फोटो वगैरह लिए, फिर वो गाड़ियां खड़ी थी गाड़ियों के फोटो लिए, यहां तक कि घर जो बनाया था वो घरों के ना बल्कि एक दो घर है वहां तो उनके फोटो भी लिए। अब ये बड़े परेशान है कि जी अब मेरा बड़ा दामाद भी उसका कोर्ट पार्टनर है, वो भी साथ था, तो उन्होंने तस्वीरें वगैरह ली, उन्होंने कहा जी आप ये है ना ये क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा जी ये हमारा ये काम है, इतनी आमदन आपको कैसे हो रही है। उन्होंने कहा जी अगर आमदन हो रही है तो आमदन या कमाना वो गुनाह तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं गुनाह तो नहीं है लेकिन आप टैक्स चोरी करते हो, सहगा जी देख लें ये मेरा काम है, उसने टैक्स की फाइलें दिखाई, लाखों के टैक्स पेड था। अब उनके पास कोई ऐसा चीज मिली नहीं जिसकी वजह से वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा सके। बच्चे ने मुझे फोन किया कि इस तरह कोई पार्टी आई है और सरकारी बंदे हैं और इस तरह, तो मैंने कहा अगर तुम दो नंबर काम नहीं करते हो तो फिर तुम्हें फिक्र होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बाप और तो कुछ नहीं करता लेकिन अल्लाह तो करता है ना, ये मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो जाहिर है फिर मुकाफात अमल तो होती है। उसने कहा जी आपको तो पता है, और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कुछ भी हो काम सीधा होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो वाजिबात हैं जो टैक्स है या जितने भी चीजें हैं वो आपने पे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मेरा नॉलेज है वो न सिर्फ ये टैक्स पे करता है बल्कि ज़कात भी देता है और सदका खैरात वो इंतहाई इन करता है, और यहां उसके गवाह भी मौजूद हैं, इसी मजलिस में उसके गवाह मौजूद हैं कि कितनी खैरात करता है। तो मुझे उम्मीद थी कि ऐसी कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल वो चूंकि जो लोग आए हुए थे अब उन्होंने कहा भी हमने इतनी मेहनत की है वह यहां से खाली हाथ कैसे जाए। अब उन्होंने दो तीन चक्कर लगाए, फिर थ्रेट किया, फिर आखिर में रिश्वत पर आ गए, और रिश्वत भी थोड़ी बहुत नहीं काफी सारी। तो मुझे उससे पूछा तो मैं अपना मेरा वही दोस्त मोहम्मद यार, एक दफा फोन उसका मेरा आता रहता है तो उसने मुझे फोन किया तो मैं थोड़ा सा परेशान था, तो उसने कहा जी आपकी आवाज़ में, मैंने कहा जी इस तरह मसला है मेरे बच्चे के साथ मसला है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, कहता मुझे बताएं आपके, मैंने कहा यार कोई ऐसी बात है मैं फोन पर आपको इतनी लंबी तफसील नहीं बता सकता। खैर उसको नटशल में कुछ मैंने चंद चीजें बताई, उसने कहा फिक्र वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल इंशाल्लाह आप भी जिक्र करें मैं भी जिक्र करता हूं, अल्लाह ताला कोई रास्ता दिखाएगा। सुबह इसने सबसे पहले मुझे फोन किया मोहम्मद यार ने कि मैं रात को स्पेशली 12 बजे आपके लिए जिक्र किया और जो मेरे जहन में क्लिक हो गई कि हमारा अपने गांव का एक बहुत बड़ा आदमी है जो कि इस वक्त अच्छी खासी बड़ी सीट पर है, तो वो तो इन सबका हेड है, तो मैं तो उसके पहुंच रहा, तो मेरा आना जाना इवन फैमिली के ताल्लुकात भी हैं तो मैं उसके पास जाऊंगा और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ये अगर इस तरह सिफारशी काम शुरू हो गया तो बड़े लोग होते हैं ना, तो फिर ये मसला कहीं और ही खराब ना हो जाए। इस वक्त मामला तो बहुत सीधा सीधा चल रहा है, तो हम उनको कुछ मिला तो है नहीं, तो मेरे ख्याल में आप ना करें। लेकिन अब ये दोस्ती की बात है, साथी है, कोई वक्त था जब कि मैंने उसको थोड़ा सा इशारा किया था, अब उसको मेरा फिक्र लग गया कि भाई बुरे वक्तों में ये मेरे काम आया तो मैं इसके क्यों ना काम आऊं। वो बेचारा अपनी तो मुझे ही नहीं बताया उसने, वो पहुंच गया वहां तक और अगले दिन मुझे फोन किया कि जी जो लोग आए उनको कह दें भी अपनी नौकरी बचानी है बचा लो यहां से चले जाओ। अब मैंने बच्चों को जब बताया, बच्चे कहते हैं अबू आप क्या हमें फंसा रहे हैं, अब हमारे पास उनको कोई चीज नहीं मिली, आप इसे थ्रेट करेंगे तो वो जहर बात है। फिर इंसान जब गुस्से में आता है तो फिर राइट लेफ्ट कई चीजें निकाल लेता है। बहरहाल ये दो चार दिन पांच दिन किस्सा चलता रहा, इसने मुझे इतनी तसल्ली दी इतनी, तो रोजाना मुझे फोन करता था। अब मुझे यहां तक इतना मुझे मतलब ये तस्कीन होगी कि एक बंदा मेरे पीछे इतना लगा हुआ है और रोजाना मुझे तलकीन ये भी करे कि आप जिक्र जो पहले कर रहे हैं वो जिक्र डबल कर रहे हैं, बस मामला यहीं खत्म हो जाएगा, मैं भी आपके लिए जिक्र करता हूं आप भी जिक्र करें। खैर जी होता रहा, सियालकोट का इज्तिमा आ गया, तो सियालकोट के इज्तिमा में चूंकि वो सियालकोट में ही तैनात है आजकल, तो वहां वो मिला मुझे। उसने कहा जी अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, अभी अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो मैं आपके साथ पिंडी जाऊंगा, आपको उनके दफ्तर में ले जाऊंगा, उनका जो हेड है उसके साथ आपको क्लीनस चिट लेके दूंगा, फिर तसली हो जाएगी। मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। रात को जब जिक्र किया तो मेरे साथ बैठा था और जिक्र करने के बाद मुझे कहा कुछ आज आपको जिक्र का कोई फर्क महसूस हुआ। मैंने कहा आज कुछ मैंने ऐसे महसूस जरूर किया है कि मेरा जिक्र पहले की निस्बत अच्छा हुआ है। कहता मैं आपके साथ था, आपको साथ देके हजरत साहब के साथ मैंने कंटेक्ट करवाया आपका और आपका जिक्र अच्छा होना चाहिए था और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा सुबह तक। ठीक है जी। अब रात को सो गए, सोने लगे तो मेरे साथ ही ले लिया। कहता कि जी सुबह ना मैं आपके साथ जाऊंगा पिंडी, तो मैंने अपने घर नहीं जाना, घर वालों को मैं बता दिया मैं सुबह आपके साथ पिंडी जाऊंगा। सुबह जब उठे तो कहता जी आप पिंडी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से चले जाएं, आपका काम हो गया, क्योंकि रात को हमने जिक्र किया मुझे बशारत होगी आपका काम हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, आप बेशक बच्चों को पता कर लें आपका काम खत्म। अब जाहिर बात है कि इतनी तसल्ली से और इतनी यानी कि शफी में कर रहा है, लेकिन मेरे दिल में यह था कि मैं ऐसे फोन करूंगा बच्चे को ऐसी बात बताएंगे तो मुझे ऐसी परेशानी से होगी, मैंने वो बात मैंने टेलीफोन नहीं किया। खैर मैं चला गया वापस पिंडी, पहुंच गया अगले दिन, गालबन संडे था फिर छुट्टी थी, तो मैंने फिर भी फोन नहीं किया। मंडे आ गया, मैंने कहा अभी दफ्तर खुले होंगे बच्चे गए होंगे तो मैं ऐसे पूछ लेता हूं। मैंने फोन किया, अपने बच्चे को फोन नहीं किया बल्कि मेरा साथ दामाद है उसको फोन किया। आप यकीन करें जो ही मैं फोन किया तो उसने कहा अंकल मैं तो बस आपके फोन का इंतजार ही कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना सिर्फ काम हो गया बल्कि हमें उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि ये बंदे बड़े फेयर हैं और हमारा काम बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने ये गारंटी दी कि आइंदा आपको कोई बंदा भी चेक करने नहीं आएगा और कोई आए तो हमें बताएं आप। तो इतना वो खुश हुआ, तो मैं समझ रहा था कि मैंने कहा देखो अभी इस जिक्र की बरकत से और वो जो साथी मेरा था उसने मेरा इतना जबरदस्त काम कर दिया, तो मैं यकीन जाने कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दो दिन गुजरे कि अब मोहम्मद यार का मुझे फोन आ गया। अब ये भराया हुआ था, बड़ा परेशान। मैंने कहा जी क्या हुआ। कहते जी आपको क्या बताएं कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कहा जी अब क्या हो गया। मैंने कहा मेरा मसला हल हुआ तो आपका। कहता मसला ये है कि वो बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन वो उसके इतना टाइम नहीं है। उसने कहा जी मैंने 2 लाख रुपया देना है किसी का और 3 दिन रह गए और मेरे पास जो रिसोर्सेज थे या जिस बुनियाद पर मैंने वो पैसे देने थे वो अल्लाह ताला ने ऐसी आजमाइश डाली है कि वो सारी रिसोर्सेज ही खत्म हो गए, मुझे उम्मीद ही नहीं है कहीं से कि एक आना कहीं मिले। पहली बात यह है कि मेरी जमीन थी, जमीन में मैंने वो मुंजी जो है ना बोई हुई थी, चावल की फसल जो होती है, और पूरे गांव में मेरी चावल की फसल जो थी वो सबसे अच्छी थी सबसे। और मैंने जो पैसे देने थे तो मेरा ख्याल था कि मैं ये जो फसल मेरी होगी तो इसके बाद मैं, और सारे गांव वाले कहते थे कि इतनी अच्छी फसल किसी की नहीं, तो 3-4 लाख रुपया तो आराम से आपको यानी ये फसल दे जाएगी। तो मैं था, मैंने कहा ठीक है, उसके ऊपर मैंने पैसे भी खर्च किए हुए थे, बड़ी मेहनत की हुई थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, पहली आजमाइश ये आई कि उसके ऊपर ओले पड़ गए और इतनी शिद्दत से पड़े कि सारी की सारी फसल तबाह हो गई। और इतनी दबा हुई कि वो जो चावल की जो होती है ना भूसा जिसको पराली बोलते हैं वो भी काली स्याह हो गई, यानी कुछ भी, यानी उसका कुछ भी मुझे नहीं मिल सकता। अब वो फसल तो खत्म हो गई, अब जो जमीन पड़ी हुई थी अल्लाह का करना, दूसरी आजमाइश ऐसी आई कि पीछे जो सैलाब आया था, सैलाब के बाद नहर थी मेरे जमीन के साथ, वो नहर टूटी और उसका सारा पानी जो है ना निकला और वो मिट्टी तो आगे चली गई और जो उसकी भल होती है ना जिसको रेत कहते हैं, वो सारी की सारी रेत पूरी मेरी जमीन के ऊपर एक एक फुट जम गई। तो दूसरे मानों में मेरी सारी जमीन जो बंजर हो गई, यानी उसमें आइंदा फसल हो ही नहीं सकती। अब वो इतनी मिट्टी मैं कैसे उठाऊं, बजाय इसके कि उस जमीन से मैं कुछ हासिल करूं, उल्टा उस मिट्टी को उठाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। एक तो मैंने कर्ज देना है, दूसरा ये उफ्ताद पड़ गई और एक जो फसल थी वो भी तबाह हुई, और मैं तो नौकरी पेशा आदमी, उधर से ना नौकरी का मामला, उधर बीवी बच्ची बीमार, उधर बच्चा बीमार, कहते एकदम सारे उफ्ताद मेरे पर ऐसी आ गई, मुझे समझ रहा है मैं क्या करूं। हाँ जी, तो बहरहाल ये जो इतना कहता है जी मुझे कोई वे आउट नजर ना आया, मैं क्या करूं। तो मैं इतना परेशान, इतना परेशान, तो अभी उसने उस परेशानी में मेरे साथ बात की, बाद में मुझे कहता है कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, पता नहीं आपके साथ बात करता तो ये मेरे मुंह से बात कैसे निकल गई, मैं आपको भी नहीं बताना चाहता था। अब मेरे जहन में सच्ची बात यह है कि इतना ज्यादा आया क्योंकि दो दिन पहले मैंने बच्चों को बताया था कि आपके लिए कौन कौन लोग आपके पीछे लगे हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं, मेरे साथी हैं जो आपके पीछे दुआएं कर रहे हैं, तो सब बच्चों को तो हालात का मैंने बताया हुआ था। अब मेरे जहन में आया कि अगर मैं बच्चों को कहूँ यार 2 लाख रुपया मुझे चाहिए, और वो ज़ाहिर है इतना तो पूछेगा, और एक और बात थी कि उस तकरीबन चंद दिन पहले वो एक महीने में उसका 3-4 लाख रुपया मैंने उससे उसका खर्चा करवा दिया था। मेरी एक बहन है उसका बेटा जो है वो कत्ल हो गया, उस मुकदमे में ज़ाहिर है फॉलोअप के लिए पैसे चाहिए, वो गरीब थी उसको पैसे भिजवाए, कुछ घर में लग गए, कुछ एक और मसला बना बनाया, फिर मैंने उम्रे पर जाना उसका भी उसको, तो ये 3-4 लाख रुपया उसका मैंने खर्चा करवा दिया। अब मैंने कहा 2 लाख और मांगूंगा तो वो कहेगी जी क्या मसला है आपको, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अभी इसी दोस्त को, तो उसके जहन में अगर नेगेटिव ख्याल आ गया तो कम अज कम मेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो मैं उससे अभी कम अज कम मोहम्मद यार के लिए पैसे नहीं मांग सकता। अब मैंने इसको कहा कि अच्छा, जब मेरे फोन पर से बात हुई मैंने कहा अच्छा आप कहता है मैं जा रहा हूँ लंगर मखदूम एक वीकेंड पर, 2 दिन की छुट्टी रही है, तो मैंने कहा आप वहां जाके मुझे फोन करें। मेरा मतलब यह था कि ये 2 दिन मिल जाएंगे मैं सोचूंगा कुछ कि मैं कहीं से इसके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। तो मेरी एक बेटी है लेक्चरर है मर्दाना यूनिवर्सिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह वो 19वें ग्रेड में है, तो इस बार पिछले साल बल्कि उसने मुझे भी और अपनी माँ को भी उमरा भी कराया, हजरत साहब के साथ ही वो की थी, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा आपको क्या जरूरत है, मैंने कहा बस चाहिए ना किसी को देने हैं, कहते मुझे कब मिलेंगे। अब बाप बेटी का ऐसे डायलॉग हो जाते हैं, मैंने कहा आपको दे दूंगा 2-3 महीने में। उसने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे अकाउंट नंबर बता दें, मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगी। मैंने यहां से तसल्ली कर ली कि मुझे यहां से 2 लाख मिल जाएंगे। तो 2 दिन के बाद मैंने इसको रिंग किया मोहम्मद यार को कि सुनाया भी क्या हाल चाल है। हम मोहम्मद यार कहता अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे काम अल्लाह ने ठीक कर दिए। मैंने कहा भाई 2 दिन पहले तो रो रहे थे, एकदम ये कैसे हो गया। कहता बस वही जिक्र अल्लाह, हमारे पास तो है ही एक चीज। मैंने कहा कैसे हुआ, कहते जी मैं तो वैसे लंगर मखदूम का रहने वाला हूँ, बस जिस रात ये मसला हुआ है मुझे कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा बस मेरा तो खुदा है या मैं तो सीधा जनाब मजार शरीफ चला गया जहाँ लंगर मखदूम हमारा जहाँ हम जाते हैं। कहते जी आधी रात के वक्त 12 बजे 1 बजे मैं जब सुहू का आलम जंगल तो है वहाँ जहाँ वो मजार शरीफ है, तो मैं जनाब वहाँ बैठ गया। बैठ के उसके बाद जनाब जो मेरा तरीकाकार है उसका तरीकाकार भी उसने मुझे बताया कि जब मैं जिक्र शुरू करता हूँ तो मैं हजरत बेग साहब के साथ रूहानी कंटेक्ट करता हूँ। अब रूहानी कंटेक्ट का भी उसने ये तरीका बताया कि जब मैं कंटेक्ट करता हूँ तो मुझे बाकी बिजली का झटका लगता है, तो मुझे समझ आती तार मिल गई, फिर मैं जिक्र शुरू करता हूँ। कहता है मैं तार मिलाई वहाँ और फिर जिक्र शुरू किया। कहता इतना जिक्र शुरू किया कि इतनी सख्त सर्दी में मैं पसीनो पसीनी हो गया, हालांकि ठंडे फर्श पर बैठा हुआ था। कहते हैं उसके बाद मैं रोया और अल्लाह ताला से फरियाद की अल्लाह अगर तुमने इज्जत दी थी इतनी ज्यादा और अगर मेरी किस्मत में इतनी ख्वारी भी तो लिखी है तो मैं तुम्हारे आपकी रजा पर राजी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ख्वार नहीं करेगा। मैं तेरा नाम लेने वाला हूँ, तेरा जिक्र करने वाला हूँ, तेरे वली का मुरीद हूँ, बस मेरे पास यही कुछ है। कहते मैंने ये दुआ करी तो ऐसे महसूस हुआ कैसे जैसे ना मुझे दिल में धार सी बन गई, भाई ये मतलब जैसे मेरा मुझे कोई गम ही नहीं है। कहते मैं आ गया घर सो गया, सुबह उठा तो जनाब एक आदमी मुझे मिलने आया। हुआ ये कि अब मुझे तो ये फिक्र था कि मैं इस मिट्टी को उठाऊं और ये जो नहरी पटवारी है उसके पास जाता हूं और उसको कहूंगा यार ये किसी तरीके से ये मेरी मदद करो, तो इस पर कितने पैसे लगते थे, मैं सोच बाजार में था। तो वो एक और आदमी था जिसकी मेरी जमीन के साथ मतलब, वो एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बना रहा था, तो उसको तो एक्सटेंड करना चाहता था। अब उसको रेत की जरूरत थी, वो कहीं दफ्तर में गया कि भाई मैं ये नहर जब खुश्क हो जाए तो इसकी मैं जो भाल जो है मिट्टी में निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इजाजत दी जाए। वहां हमारे गांव का एक आदमी था, उसने कहा यार तुम इधर दरखास्तें देते फिरते हो और ये जनाब पता नहीं कागजी कार्रवाई कब तुम्हें इजाजत मिलेगी, कब तुम निकालोगे, तुम्हें तो जल्दी चाहिए। तो वो मोहम्मद यार है, उसकी जमीन पर इतनी मिट्टी पड़ी हुई, उधर से जाकर ले लो ना। कहता जी वो मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया। मैं कहता जी आपने ये मिट्टी बेचनी है? मैंने कहा वाह भाई वाह, मैं तो इसको निकालने के लिए मतलब जान अपने पैसे दे रही है। कहते हैं जी मैं अभी सोच में पड़ गया, मैंने कहा हाँ जी बेचनी तो है। कहते कितने पैसे लोगे? मैंने कहा यार मैं पता नहीं कितने पैसे मांगू, ज्यादा मांगू थोड़े मांगू। मैंने कहा जी आप बताएं आप कितने देंगे? वो सोच के पता क्या कहते हैं, कहते 4 लाख लेते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख देना, 2 लाख लाडी ऊपर दे दिया। मैंने कहा जो उसी वक्त उसने मुझे बयाना दे दिया जनाब। कहता जी मैं मिट्टी उठाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने जनाब 4 लाख मुझे दे दिया, मेरी मिट्टी भी उठ गई, मेरी जमीन भी सेट हो गई, बल्कि जमीन भी जाहिर हो, उसने सारी मिट्टी उठाई वहां से। मैं वहां इतना खुश हुआ इतना खुश हुआ। एक गाँव का एक और आदमी था, उसकी बीवी मार रहती थी, तो उसकी बीवी मार थी, तो वो जनाब रोजाना मुझे कहता था कि यार आप मुझे मेरी बीवी को दम कर दें, आप अल्लाह करते हैं आप। उसने कहा मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ भाई, ना मैं तवीज़ गंडा करता हूँ, मैं तो बस ये बस सर झुकाने वाला बंदा हूँ, अल्लाह करता हूँ। नहीं बस आप मेरी बीवी को दम कर दें, मैं आप अपनी बीवी को आपके पास लेके आता हूँ। ने कहा यार मेरी अपनी बीवी को मेरे पास मत लाओ, मैं दम कर दूंगा इधर से कर दूंगा। अब उसको टंगाने के लिए कह लो जाते, कहता जी आप कब दम करेंगे? मैंने कहा अच्छा मैं रात को जब जिक्र करता हूँ ना उसके वक्त मैं दम कर दूंगा, बस आप अम्मी बीवी को घर में रखें तो मैं कर दूंगा। अब टाइम भी पूछ लिया उसने, कहा जी 8-9 के दरमियान मैं जिक्र करता हूँ तो फिर मैं आपको दम कर दूंगा। अब जब रात को जिक्र करने लगा मुझे अचानक याद आया भाई वादा तो किया है ना, चलो भाई दम करके जो है ना जिक्र करके फूक मार देता हूँ उस साइड पर। कहते हैं ये मैंने बिल्कुल उस तरह जिक्र किया और खलूस के साथ वो उसकी तरफ जहाँ वो रहता था फूक मार दिया, हालांकि वहां से 2 किलोमीटर दूर था। तो रात के 10 बजे या ऐसे टाइम पर मुझे उसका फोन आया, कहता जी आपने मेरे साथ वादा किया था वो दम किया है आपने? कहता जी किया है। कब किया है? कहता जी 8:30 या 9 बजे। कहता उसी वक्त के बाद मेरी बीवी ठीक हो गई। अब अंदाजा करें कि एक जिक्र अल्लाह की ये 2 किलोमीटर दूर फूंक मारी है खलूस दिल के साथ जिक्र करके, तो उसकी बीवी ठीक हो गई, उसका एतकाद देखें यकीन देखें। कहता जो अगले दिन आया इतना खुश था, उसने कहा यार मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है और मुझसे ये हो जाएगा खर्च और आपकी मुंजी खराब हुई हुई है और आपको तो इसकी पैसे की जरूरत हो गई, यार तुम कह ये 2 लाख ले लो और जब मर्जी मुझे पैसे दे देना। यानी आप 4 उद्देश्य में 2-6 लाख रुपया के मुझे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने ऐसे आपसे बात की थी, अगर आपको अभी पैसे चाहिए तो मुझे बताएं। ये है जिक्र अल्लाह की बरकत, ये है अपने शेख के साथ अकीदत और ये है इस सिलसिले की बरकत। ये मैंने सुना चुका हूँ पहले भी और अभी इंशाल्लाह ताला अभी और वाकया तो उसको लेके लाया है वो और इंशाल्लाह उसको एडिट में करूंगा इंशाल्लाह। अगला जो इजमा होगा उसमें बाकी वाकयात भी तसल्ली के साथ इंशाल्लाह सुना दूंगा। मुझे भी और आपको भी सबको अल्लाह ताला इस सिलसिले का जोड़े रखे और इसी अकीदत इसी मोहब्बत के साथ। और सच्ची बात यह है कि मैं यानी एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरे साथी मुझसे बहुत सीनियर हैं, मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है, हम हकीकतन जो जिक्र करते हैं उस खलूस के साथ या उस मेहनत के साथ नहीं करते जो कि हजरत साहब फरमाते रहते हैं तसलसल तेजी और कुव्वत। ये बातें तो बहुत सादा सी लगती हैं लेकिन हकीकतन राज इसी में है। जिस दिन आप अपना पसीना निकाल लेंगे ना, यानी आपको पसीना आ जाएगा, आपका दिल मुतमिन होगा कि मैंने आज जिक्र किया है, बाकी सिर हलाना तो कोई बात नहीं है। और दूसरी एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी अर्ज किया है कि यार ये जो फोन है ये जो मोबाइल है इसको हम ये आधे घंटे घंटे के लिए बंद नहीं कर सकते। मतलब एक बात यह है कि एक म्यूजिक बजाए खुद हराम है मस्जिद में, अब ये हमारी मस्जिद ही है ना, तो उस पर म्यूजिक में हमने रिंग टोने भी मुख्तलिफ साथियों ने ऐसी रखी हुई है जोड़ी खासी काबिल एतराज है, तो जिक्र के दौरान बजती है, हजरत साहब को तकलीफ होती है, वो एक दो दफा कहते हैं लोगों को डंडे तो नहीं मारेंगे ना, हमें एहसास करना चाहिए कि ये जो है ना कम अज कम। अब देखिए मेरे पास भी फोन है, आप बिलीव करते हैं कि ये रात का बंद पड़ा हुआ है, कोई ऐसी क्यामत नहीं आ गई, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि आपने शहरी के टाइम करना है कि जिसकी वजह से आपको फोन आना बड़ा जरूरी है, तो बंद कर सकता है आदमी। तो ये एक रिक्वेस्ट है, एक तो फोन का इस्तेमाल जो है ना ये कम अज कम, जिक्र के दौरान नमाज के दौरान इसको बंद रखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हदाय नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।